पूछेंगे उसका अंदर समाप्त हो जाएगा। और अगले स्कंद के अंदर राजा सुखदेव गोस्वामी जो राधा का गुणगान करेंगे उनके प्रश्न के लिए। तो यहां पे परीक्षित महाराज का जो है एक गुण हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो आदर्श राजा थे। जब उन्होंने देखा एक बैल है जो कि एक ही पैर पे खड़ा है और एक भयानक असुर के समान एक महान भयानक व्यक्ति है जो एक गाय का वध करने जा रहा है, और तुरंत परीक्षित महाराज ने जो अपनी तलवार निकाल ली और उसका वध करने के लिए ऐसे करें, और उस बैल से पूछा कि तुम्हारा वध जो है ये तुम्हारी ये दर्द किसने की है, और ये गाय रो रही है। नहीं, बैल की पिटाई कर रहा था वो व्यक्ति जो है, तो वो बैल धर्म थे और गाय जो है पृथ्वी थी, ऐसा पृथ्वी। हाँ, तो राजा परीक्षित तुरंत तलवार निकाल ली उस असुर का वध करने के लिए। असुर तो नहीं, वो कलिराज थे, और उनसे पूछा आप कौन हो। तो जब बैल से पूछा राजा परीक्षित ने कि ये आपकी दुर्दशा किसने की है, तो राजा कहते हैं, तो बैल कहता है वो धर्म कि यदि कोई पाप करता है तो वो तो पाप का भागी होता है, लेकिन उस पाप की ओर कोई सूचना करता है, सूचक साप इतत भवेत, तो वो भी पाप का भागी होता है। इसलिए तुम खुद ही जान लो कि ये हालत किसने की है। तो क्योंकि बैल, और फिर वो जो कलिराज थे वो महाराज पर शरण ग्रहण करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से अपने प्रजा का शासन किया कि वो हर प्रकार से आध्यात्मिक रूप में उन्नति कर सके, उनकी रक्षा की, विशेष गायों से, गायों की और बैल की, ब्राह्मणों के इत्यादि। तो यहां पे उन्हीं महाराज परीक्षित का गुणगान हो रहा है। वो बोल रहे हैं, यह बालक राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा, और अपने वचन का पालन करने में किसके समान होगा। वो वचन का पालन करने में मुख्य फेमस कौन है? भगवान रामचंद्र। रघुकुल रीति सदा से आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ऐसे करके। तो ये भगवान राम की तरह होगा अपने वचन का पालन करने के लिए। और यह है दान देने में किसके समान होगा? महाराज शिबी के समान। शिबी महाराज ने अपने जो है सारे शरीर का मांस भी एक पक्षी के लिए दे दिया था, ऐसे करते। अजय प्रभु जी कह रहे हैं कर्ण के बारे में, दानवीर कर्ण। इसलिए कर्ण इज नॉट सीन एज अ फेमस पर्सनैलिटी इन महाभारत। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर विशेषकर कर्ण की लोग पूजा करते हैं, दानवीर कर्ण, लेकिन बहुत सारे मिसकंसेप्शन लोगों के उसके बारे में। लोग कर्ण की पूजा भी करते हैं वास्तविकता के अंदर, अब जाएंगे, लेकिन ये सही सिद्धांत नहीं है। लोग रावण की पूजा करते हैं, कर्ण की पूजा करते हैं, एकलव्य की पूजा करते हैं, ऐसे करके ये सारे अपसिद्धांत हैं जो है। एनी हाउ, और आगे अपने कुल तथा कुल के नाम तथा यश को उस तरह फैलाएगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था, ऐसे करके। तो देखिए भरत महाराज के नाम पे इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। तो ऐसे बनेंगे महाराज परीक्षित। फिर धनुधरों में किसके समान होगा यह है बालक? अर्जुन के समान होगा। अब प्रभुपाद आत्मा दो अर्जुनों का वर्णन करें, कार्तवीर्य अर्जुन और पांडव अर्जुन। और अग्निदेव के समान दुर्निवार और समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा, अर्थात कोई जीत नहीं पाएगा उनसे। और उसके बाद कह रहे हैं यह बालक सिंह के समान बलशाली होगा, हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा, पृथ्वी के समान क्षमावान होगा और माता पिता के समान सहिष्णु होगा। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या ब्रह्मा के समान होगा, दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा, यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। सोचिए ऐसे होते राजा, ऐसा नहीं आपने वोट दे दिया और कोई भी राजा बन जाएगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे डेमोक्रेसी को डीमन क्रेजी। लोग कहते हैं डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। तो हमारे भक्त कहते हैं ऑफ द शूद्रास, बाय द शूद्रास, फॉर द शूद्रास, कि शूद्रों के द्वारा ही नियुक्त कर गए शूद्र नेता, शूद्रों के लिए नियुक्त कर गए शूद्र नेता, इस प्रकार से। तो इसलिए प्रभुपाद के डीमन क्रेजी, कि पागल असुरों के समान है। और प्रभुपाद इनके इसके तात्पर्य, इस प्रसंग के तात्पर्य में पूरा खंडन करते हैं इस प्रकार के वोट देने के जो है शासन को, क्योंकि जिन लोगों को वोट देना है उनको भी राजा के गुण नहीं पता, जिसको वोट स्वीकार करना है उसको भी केवल अपनी कुर्सी से मतलब है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसके अंदर एक तात्पर्य बताते हैं श्री प्रभुपाद, कि लोग तब तक राजनीति में लगे रहेंगे जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाएंगे, ऐसे करके, या फिर जबरदस्ती को उन्हें राजनीति से निकाल नहीं देगा। ये दो ही कारण में लोग राजनीति से हटते हैं, नहीं तो जिंदगी के अंत तक प्राण जाए पर राजनीति ना जाए, ऐसे कुर्सी ना जाए, ना ऐसा है। तो लोगों के अंदर इस प्रकार के नेताओं को यदि कोई चुनेगा तो समाज में कभी भी जो है संपन्नता नहीं हो सकती। और बोल रहे हैं यह भगवान यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा, उदारता में यह राजा रंतिदेव के समान तथा धर्म में महाराज ययाति की भांति होगा। वे कह रहे हैं बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा और यह अनेक अश्वमेध यज्ञों का संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों का दंडक देने वाला होगा। इस प्रकार से तो जो है राजा परीक्षित के गुण बताए गए हैं और ये एक राजा के गुण हुए करते थे और किसी भी नेता के अंदर समराइज किया जाए तो ये चार गुण विशेष रूप से होने चाहिए एक राजा के, एक लीडर के अंदर चार सीज के रूप में से आप लिख सकते हैं। द फर्स्ट इज कैरेक्टर, जो एक नेता का चरित्र बहुत ही गुणवान होना चाहिए। ऐसे करके आजकल के लोग यही कहते हैं कि राजा या बॉस का नेता का चरित्र कैसा मर्जी हो, जब तक वो अच्छा शासन कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके जैसे हम देखते हैं एक इस विश्व के सबसे बड़े प्रभावशाली राष्ट्र के एक राष्ट्रपति हुए थे, लेकिन लोग उनको जो है उनका चाहे अवैध संबंधों के स्त्री के साथ लोगों को कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि वो शासन कर सकते हैं। सच बात है कि नहीं? ऐसे करके लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, उनका चरित्र कैसा है नहीं है। ऐसे करके और तो ये आजकल के हम नेताओं का चुनाव करते हैं, लेकिन किसी भी राजा के या नेता के अंदर उसका चरित्र बहुत गुणवान होना चाहिए और इस चरित्र का सबसे पहला चीज है कैरेक्टर के अंदर कि भगवान के भक्त होने चाहिए। ऐसे करके और उसके अंदर जो है अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वो व्यक्ति जो लालची ना हो, काम क्रोध से जो है मुक्त हो, विशेषकर ऐसा व्यक्ति वास्तव में शासन कर सकता है और धर्म परायण हो तभी उसका चरित्र हो सकता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं जितने नेता होंगे उनका एक ही कार्य है किस वह धन बटोर करके जो है रखा जाए। ऐसे करके तो चरित्र होना चाहिए एक नेता के अंदर। दूसरा है ही शुड बी कंपिटेंट, वो दक्ष होना चाहिए। कंपिटेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडिंग द पीपल, क्योंकि अनेकों अनेकों प्रकार के लोग आएंगे, विरोधी तत्व आएंगे जो कि समाज में या प्रजा को जो है रक्षा नहीं, जो उपद्रव फैलाएंगे समाज के अंदर। तो ऐसे उपद्रवकारियों को जो है ठंडा करने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए और साथ साथ हर व्यक्ति को यथा योग्य उसकी क्षमता के अनुसार उसको कार्य में लगाने की दक्षता होनी चाहिए एक नेता के अंदर। ऐसे करके कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कार्य के अनुसार, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कार्य के अनुसार, शूद्र है तो शूद्र कार्य के अनुसार, वैश्य है तो वैश्य के अनुसार, उनकी यथा उचित गुण कर्म के अनुसार उनको जो है उस प्रकार का कार्य उसको देना चाहिए। ये एक राजा को बहुत दक्ष होना चाहिए एक नेता को कि अपने सभी सबॉर्डिनेट्स की रक्षा कर सके और साथ साथ उनको जो है उनके गुणानुरूप उनके कार्य में लगा सके। और तीसरा उसके अंदर फिर ये नहीं कि राजा जो है ऑटोक्रेट होना चाहिए, ये इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि राजा के अंदर जो है एक प्रकार की करुणा होनी चाहिए, यह कह सकते हैं उसके नम्रता होनी चाहिए। यह करुणा क्या है कि ऐसा नहीं मैं राजा हूं तो मैं जो मैं कह रहा हूं मेरी बात का पालन करो, ऐसा करके तो तानाशाही कहलाएगी, है कि नहीं? यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा, जेल में डाल दिए जाओगे। जैसे आज से कुछ सालों पहले रशिया और इन जगहों पर कम्युनिस्ट शासक हुआ करता था, साम्यवादी जो राजा हुआ, जो नेता हुआ करते थे, तो उनके अगेंस्ट यदि कोई भी खड़ा होता था तो क्या करते थे, तुरंत उसकी जो है हत्या करवा देते। ऐसे करके विपक्ष में कोई नहीं देख सकता कि हमारे विरुद्ध आंदोलन कैसे हो रहा है, तभी रशियन रेवोल्यूशन अगेंस्ट दार्स और इस प्रकार के जो है कई कई आंदोलन हुए जो है राष्ट्र साम्यवादी नेताओं के कारण। तो ऐसे जो एक राजा को तानाशाह नहीं होना चाहिए, उसे करुणा होनी चाहिए कि दूसरों के दुख दर्द को समझ सके, विशेषकर अपनी प्रजा के दुख दर्द को जो है समझ सके और उनको उनकी रक्षा कर सके। तो करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार महाराज परीक्षित जैसे ही उस बैल की हालत देखी तुरंत ही उनके अंदर जो है करुणा जाग उठी। ऐसी ये कथा आती है महाराज रामचंद्र के प्रसंग के अंदर भी, उनके पास एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता आता है उनके द्वार पे और मंत्रियों से मनुष्य की भाषा में हालांकि बोलता है कि मुझे भगवान राम से मिलना है। अभी कुत्ता तो अशुद्ध जीव होता है, राजमहल में कैसे लेके जाएं? तो वो तर्क देता है कि नहीं, प्रजा को जो है राजा से मिलने का अधिकार होना चाहिए, मैं भी उनकी प्रजा हूं। तो भगवान रामचंद्र ने ठीक है लेके आओ, और उस कुत्ते के जो है जगह तो चोट लगी होती है और खून निकल रहा होता है। तो रामचंद्र जैसे देखते हैं तो तुरंत पूछते हैं ये तुम्हारी हालत किसने करी, और फिर वो कुत्ता आगे बताता है ऐसे करके कि ऐसे ऐसे जो हालत हुई और भगवान रामचंद्र फिर न्याय देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक राजा के अंदर जो है विशेष करुणा होनी चाहिए अपने प्रजा के प्रति, इसे करके जिसने उनकी शरण ग्रहण की है। और इस श्लोक में बताया गया है कि इसके अगले सॉरी इसी श्लोक के तात्पर्य के अंदर कि सर्वोपरि होने के कारण राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञाएं देनी चाहिए अपितु कभी कभी उनके उपदेशों का भी पालन करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा राजा यही सोचेगा केवल, या कोई भी नेता सोचेगा समाज का, क्योंकि मैं नेता हूं इसलिए सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करें और मैं किसी की आज्ञा पालन ना करूं। पर यहां बता रहे हैं ऐसा भी नहीं है, कभी कभी नेता को भी अपने जो आश्रित लोग हैं उनकी बात को मानना चाहिए ऐसे करके। और चौथा यहां बताया गया है वो है करेज, साहस। एक राजा के अंदर साहस होना चाहिए कि वह विरोधी तत्वों को जो है शांत कर सके और जो लोग धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको दंडित कर सके, ताकि समाज के अंदर आदर्श उत्पन्न हो सके कि यदि कोई नियम पालन नहीं करेगा धर्म का तो उसका क्या हाल होगा, उसे दंड मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति जो धर्म का नियम का पालन नहीं करता है उसे दंडित नहीं होता है, उसे दंड नहीं मिलता है, तो पूरे समाज में यह प्रचार होता है कि ठीक है कोई भी पाप कर सकता है, इसका परिणाम कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है कि नहीं। तो इसीलिए एक राजा के अंदर साहस होना चाहिए ऐसे आतताइयों का वध करने के लिए ऐसे करके। तो ये बहुत विशेष चीज है कि एक नेता के अंदर ये चार गुण होने चाहिए, विशेषकर क्षत्रिय नेता के अंदर। और ये चार गुण हम भागवत में देखें किसी भी राजा के अंदर तो जरूर मौजूद होंगे ऐसे करके, कि वो अच्छे से उनका चरित्र होगा बहुत ही गुणवान यशस्वी, और उनके अंदर सभी एडमिनिस्ट्रेशन के क्वालिटीज होंगे, वो उनके अंदर बहुत करुणा होगी अपने आश्रितों के प्रति और उनके अंदर साहस होगा इस प्रकार से। तो ये चार एक राजा के कर्तव्य होने चाहिए इस प्रकार से। और हम देखेंगे इन दोनों प्रसंग के अंदर एक विशेष चीज है। अभी आने दो तीन श्लोक के बाद अंगिरा मुनि पूछेंगे कि महाराज चित्रकेतु तुम्हारी तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, सब कुछ पहले पूछेंगे सब कुछ ठीक तो है, तो चित्रकेतु महाराज तो उनको उत्तर देंगे कि सब कुछ ठीक है लेकिन मेरी एक ही समस्या है। क्या समस्या है? कि पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा ऐसे करके। देखिए वो पुत्र उत्पत्ति इसलिए नहीं चाहते थे कि जस्ट उनका पुत्र होना चाहिए, उनका खिलाने का मन कर रहा है इसीलिए, वो चाहते थे कि क्योंकि ये राजा किसी भी राजा की क्षत्रिय राजाओं की सबसे बड़ी दुविधा चिंता होती थी, वो चिंता होती थी कि उनके जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा ऐसे करके। सो लीडर्स ड्यूटी द फॉरमोस्ट ड्यूटी शिल प्रभुपाद इन भागवतम ऑल्सो इज टू प्रोड्यूस अनदर लीडर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर किसी भी नेता के लिए कि उसकी हमेशा चिंता होती थी कि इसको उत्तराधिकारी कौन बनेगा इस शासन का, क्योंकि अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होगा तो क्या होगा, पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी और धर्म के नियमों का कोई पालन नहीं करेगा, लोग धर्म के विरुद्ध चलेंगे। तो यही चिंता युधिष्ठिर महाराज को थी कि आगे समाज का शासन करने के लिए उचित राजा होना चाहिए, और यही चित्रकेतु महाराज को भी जो है यही चिंता है कि आगे नहीं तो धर्म के नियमों का पालन कौन करेगा ऐसे करके। तो एक लीडर की यही चिंता है। और ये प्रभुपाद कहते हैं एक राजा की सबसे बड़ा कर्तव्य होता था, इसलिए संतान उत्पत्ति राजा के लिए, एक पुत्र का को उत्पन्न करना एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य हुआ करता था। और पुत्र भी कैसा, अयोग्य पुत्र नहीं, ऐसा पुत्र जो राज्य का शासन कर सके ऐसा करके, जो सही प्रकार से धर्म का पालन करते हुए राज्य पार कर सके ऐसे का ये कर्तव्य हुआ करता था इस प्रकार से। और यहां पे प्रभुपाद जो है इस तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं कि इस श्लोक में राजा तथा उसके आश्रितों के वास्तविक सुख का उल्लेख हुआ है। दिस इज द एक्चुअल हैप्पीनेस ऑफ अ किंग एंड हिज डिपेंडेंस इज डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्स। अ किंग शुड नॉट सिंपली गिव ऑर्डर्स टू हिज डिपेंडेंट्स बिकॉज ही इज सुप्रीम, समटाइम्स ही मस्ट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। सिमिलरली द डिपेंडेंट शुड डिपेंड ऑन द किंग। दिस म्यूचुअल डिपेंडेंस विल मेक एवरी वन हैप्पी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार की परस्पर अन्योन्य आश्रितता, कि जब एक दूसरे परस्पर आश्रित होंगे तो राजा और प्रजा दोनों संतुष्ट रह पाएंगी। और अगले बता रहे हैं द मास्टर और किंग एंड हिज सबॉर्डिनेट्स शुड बी इंटर डिपेंडेंट, थ्रू कॉपरेशन बोथ ऑफ देम कैन बी हैप्पी। ऐसे हमारे इस्कॉन के समाज में भी देखें, या किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए, ये जानना बहुत आवश्यक है कि तीन प्रकार के लोग होंगे निश्चित रूप से। जिस मोहन बाबू आए थे उन्होंने वर्णन किया था, लेकिन मैनेजमेंट कंपनी जो तीन प्रकार के लोगों का वर्णन करती है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट। एक्चुअली थर्ड ऑल्सो विच मैनेजमेंट कंपनी स्पेशली स्पीक इस पहले है डिपेंडेंट लोग। तो ऐसे लोग क्या है, डिपेंडेंस अर्थात निर्भरता। ये निर्भरता कैसा है, कोई फिजिकल रूप से शारीरिक रूप से निर्भर है। मान लीजिए भाई उसको पंगू है, या फिर उसका हाथ नहीं है, एक नेत्र नहीं है, या कुछ मानसिक रूप से खासकर भी शारीरिक रूप से आंख नहीं है मान लीजिए उसका, या कम सुनाई पड़ता है, तो वो क्या है, दूसरे लोगों पे आश्रित है कि नहीं, वो निर्भर है, वो डिपेंडेंट है, एक फिजिकल डिपेंडेंस ऐसे करके। तो ऐसे जो आश्रित लोग होते हैं वो हमेशा निर्भर क्या करते हैं, अपनी चीजों को पाने के लिए जो वो चाहते हैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं ऐसे करके। हम अपने आसपास देख सकते हैं कई लोग ऐसे होंगे जो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, तो या तो फिजिकली डिपेंडेंट होंगे या मेंटली इमोशनली डिपेंडेंट होंगे। इमोशनली डिपेंडेंट अर्थात उनको बतलाना पड़ेगा कि नहीं आप यू आर वर्थफुल, यू नो यू आर वर्थ समथिंग। उनको हमेशा ये लगता है कि मैं बिल्कुल तुच्छ हूं, कोई मेरे को जानता नहीं, मेरे लिए मेरा इस समाज में कोई योगदान के लिए नहीं है, इस समाज में मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं बिल्कुल महत्वहीन हूं, उन्हें लगता है ऐसे लोगों को। तो ऐसे इमोशनली डिपेंडेंट लोग, डिपेंडेंट को हम कर सकते हैं इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं लोग ऐसे करके। यदि आप उन्हें बोल, उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे हो ऐसे करके, उनके सेंस ऑफ वर्थ नहीं तो हाथ ही नहीं है। और तीसरा है और यदि ऐसे लोगों को, इमोशनली डिपेंडेंट लोगों को यदि किसी ने बोल दिया कि आप बेकार हो, तो बस वो तो उनकी आत्महत्या के समान हो जाएगा, वो सहन ही नहीं कर सकते ऐसे करके। इंद्र का वज्र हो गया, चाहे शिवजी का त्रिशूल हो गया, भगवान सुदर्शन चक्र हो गया, सब मिलकर के उनके ऊपर एक साथ जो है आघात हो जाएगा ऐसे लोगों के ऊपर। हम देखेंगे आदि कई लोग आज के जमाने में विशेषकर ऐसे लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अकेलेपन का शिकार हैं, वो किसी पे आश्रित नहीं रह सकते, उनके पास कोई आश्रय नहीं है, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं ऐसे करके, या डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार। तो ये डिपेंडेंट लोग होते हैं मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली। इसका विपरीत है इंडिपेंडेंट लोग ऐसे करके। तो सबको लगेगा कि हाँ इंडिपेंडेंट लोग मतलब बहुत जिम्मेदार हैं, और जिसे बोलते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, हमने सुना होगा कि मैं अपना कार्य खुद कर सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है ऐसे करके। तो ऐसे लोग होते हैं इंडिपेंडेंट, तो लगेगा हाँ बहुत अच्छा, ऐसे ही लोग होने चाहिए कि किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना कार्य खुद कर सकता हूं। और इंडिपेंडेंस भी अच्छी क्वालिटी है एक प्रकार से कम व्यक्ति दूसरों पर पैरासाइट के समान तो नहीं है, दूसरों का अर्थात जोंक के समान तो नहीं है जो हर समय दूसरों पे लटका रहेगा ऐसा करके। ऐसे पुराने जमाने में एक कहानी भी सुनी होगी और टीवी में दिखाते थे, विक्रम बेताल करके होता था, तो बेताल हमेशा विक्रम के सर पे चढ़ा रहता था ऐसा करके। तो कई लोग ऐसे होते हैं चढ़े रहते हैं हमेशा ऐसा करके, है कि नहीं। और इंडिपेंडेंट लोग होते हैं तो उनको किसी का कोई दिशा निर्देश, किसी की आवश्यकता नहीं है। तो फिजिकली इंडिपेंडेंट, उनको किसी के कोई बैसाखी की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेंटली डिपेंडेंट है, वो अपने विचार खुद फ्रेम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज लेके आ सकते हैं। और इमोशनली उनको कई विशेष लोगों की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है ऐसे करके, वो अपने उनके जो हैं मतलब आत्मनिर्भर हैं, वो लोग उनको किसी की और आवश्यकता नहीं, स्वच्छंद लोग हैं ऐसे करके। तो कई सबको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं ऐसे करके। और आजकल लोग स्वतंत्रता के नाम पे इसीलिए जो है उनके संबंध विच्छेद, तलाक होते हैं, और कि मेरे को स्वतंत्र छोड़ दो, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे करके। तो इसका गलत मतलब लोग उठा लेते हैं स्वतंत्रता का, स्वच्छंदता का, इंडिपेंडेंस का। तो इसीलिए मैनेजमेंट कंपनी चाहती है ऐसे लोग हो जो ना डिपेंडेंट हो ना जो इंडिपेंडेंट हो, वो कैसे हो, इंटरडिपेंडेंट हो ऐसे करके, म्यूचुअली डिपेंडेंट। यही प्रभात कह रहे हैं भाई, म्यूचुअल कोऑपरेशन, भाई म्यूचुअल डिपेंडेंट ऐसे करके। इंटरडिपेंडेंट लोग वो हैं जो इंडिपेंडेंटली सोच तो सकते हैं, उनके तो अपनी विचार शक्ति है वो, लेकिन अपने कार्य को करने पे या फिर अपने जीवन को जीने पे वो दूसरों के ऊपर भी आश्रित हैं, पूर्णतया निर्भर नहीं है। हालांकि कि वो बिल्कुल चिपक ही गए उन्हीं के ऊपर हैं, वो अपना कार्य करना भी जानते हैं और दूसरों की एग्जिस्टेंस को पूर्णतया अप्रिशिएट करते हैं ऐसे करके। और वो जानते हैं कि किस व्यक्ति कौन सी चीज में योगदान दे सकता है ऐसे करके। और अपने जीवन को भी देखें, हम सब वास्तविकता में इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे हमें से कई भक्तों ने जो है फिजिकल रूप से भी देखा जाए, हमने चश्मा डाल रखा है कि नहीं। तो हम किस पे आश्रित हैं, हम डॉक्टर के ऊपर, जो आई ऑप्टिशियन उसके ऊपर आश्रित हैं, हम जो चश्मा बनाते हैं उनके ऊपर आश्रित हैं, है कि नहीं। तो हम देख रहे थे समाज के हम उनके ऊपर आश्रित हैं एक प्रकार से. तो ऐसे करके या फिर और भी जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं जीवन के अंदर, देखिए हम पंखा चलाते हैं, लाइट खराब हो जाती है कभी, तो हम बिजली वालों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं. या आज के जमाने में जितने लोग फैक्ट्री या बिजनेस चलाते होंगे, सबसे बड़ी समस्या आती होगी एक लेबर के साथ काम करने में. लेबर उनको मिलती नहीं होगी, लेबर जो है लेबर अनरेस्ट होता होगा, वो स्ट्राइक करते होंगे. तो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि राजा को अपने आश्रितों का ध्यान रखना चाहिए, आश्रितों को राजा का ध्यान रखना चाहिए. इस इंटरडिपेंडेंस जो है दिस मेक्स द कम्युनिटी एक्चुअली. ऐसे करके यदि हर व्यक्ति इंटरडिपेंडेंट होगा दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, जिस प्रकार से हम यहाँ पे भागवतों का श्रवण कर रहे हैं, अभी कुछ समय के बाद क्या होगा, हम सबको प्रसाद मिल जाएगा. यदि कुछ भक्त ऊपर प्रसाद नहीं बना रहे होंगे तो हमारे यहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष तो है नहीं कि प्रसाद मांगे प्रसाद हमारे पास आ जाए. कल्प वृक्ष है लेकिन हमारे लिए नहीं है. ऐसे करके है कि नहीं कि बोले भाई ये पेड़ है चलो लाओ प्रसाद, 100 भक्तों के प्रसाद चाहिए, ठीक है 10 आइटम तुरंत फीस्ट रेडी है कि नहीं. तो हम सबको जो है तो वी आर इंटरडिपेंडेंट. हर व्यक्ति का हमारे समाज में कुछ सहयोग है. सारी समस्या ये है, समस्या नहीं क्वेश्चन ये है, एक सवाल ये है कि उनको उनके यथारूप शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार उनकी जगह पर फिट किया जाए. ऐसे करके जैसे मान लीजिए पंखे की जगह पे आप लाइट फिट कर देंगे तो क्या होगा, तो थोड़ी जलेगी ना, हवा आने वाली है. ऐसे करके तो पंखे का अपना योगदान है और ट्यूबलाइट का अपना योगदान है, लेकिन दोनों का अपनी जगह भी योगदान है. ऐसे करके है कि नहीं. तो इसी प्रकार से यह म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस यहां पे लिखा रहे हैं, इफ आई एम फिजिकली इंटरडिपेंडेंट आई एम सेल्फ रिलायंट एंड कैपेबल बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट यू एंड आई वर्किंग टूगेदर कैन अकम्पलिश फार मोर देन इवन एट माई बेस्ट आई कुड अकम्पलिश अलोन. तो ऐसे लोग यदि हालांकि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकता हूं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो सकता हूं और मेरे अंदर क्षमता हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूं यदि मैं और आप मिलें तो क्या होगा, हम दोनों के इंडिविजुअल कैपेसिटी से कहीं अधिक जो है प्राप्त कर सकते हैं. जैसे ये बताया जाता है एक और एक कितने होते हैं, नहीं 11 नहीं होते, 2 ही होते हैं. एक और एक होते तो 2 ही हैं, वो तब होते हैं जब दोनों के अंदर कॉपरेशन हो. ऐसे करके और एक और एक, एक और एक, एक तभी होते हैं, एक तब होते हैं जब दोनों में अलग अलग हो बिल्कुल. तो एक और एक ही होगा वो, और एक और एक 0 भी होता है जो दोनों की आपस में बनती नहीं है. ऐसे करके तो क्या होगा, दोनों मिलेंगे लेकिन आपस में बड़ी लड़ाई करेंगे केवल. और एक और एक 11 तब होंगे मैनेजमेंट में जब टीम के अंदर सिनर्जी होगी. सिनर्जी इज बियॉन्ड इवन कॉपरेशन. जब प्रेम होगा तो एक और एक 11 होगा. ऐसे करके है कि नहीं. तो ये है दिस सिनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे करें किसी भी कि आपस में एक दूसरे की हम क्षमता को जाने, कमी को भी जाने, और उस क्षमता और कमी को जो है अप्रिशिएट करते हुए उसी कमी को हम पूरा करें और क्षमता को जो है पूर्णतया व्यवहारिक रूप से लेकर के आए. ऐसे आगे बता रहे हैं इफ आई एम इमोशनल इंटरडिपेंडेंट. इमोशनल इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या है, आई डिराइव अ ग्रेट सेंस ऑफ वर्थ विद इन माई सेल्फ बट आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज द नीड फॉर लव फॉर गिविंग एंड फॉर रिसीविंग लव फ्रॉम अदर्स. ऐसे करके कई लोग डिपेंडेंट लोग क्या है, मुझे कोई प्रेम देता नहीं है, प्रेम दें प्रेम दें प्रेम दें है कि नहीं. उनके अंदर केवल एक ही क्वेश्चन होता है कि मुझे कोई प्रेम नहीं देता. लेकिन इंटरडिपेंडेंट लोग ये जानते हैं कि मुझे दूसरों से प्रेम भी चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, दूसरों को भी प्रेम देना चाहिए. ऐसे करके ऐसे तो ये लोग जो है ये प्रोजेक्ट से ज्यादा जो है संबंधों को इंपॉर्टेंस देते हैं. ऐसे करके और इफ आई एम इंटेलेक्चुअली इंटरडिपेंडेंट आई रियलाइज दैट आई नीड द बेस्ट थिंकिंग ऑफ अदर पीपल टू ज्वाइन विद माई ओन. यदि कोई बौद्धिक रूप से बहुत बुद्धिमान है मान लीजिए, वो सोच सकता है, तो भी वो ये जानता है कि अगर दूसरे बुद्धिमान लोग हैं तो उनकी राय लेने का भी जो है फायदा है, मुझे लेना चाहिए. तो ऐसे इंटरडिपेंडेंट लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं. और हमारी इस्कॉन संस्था में भी इस चीज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार के लोग होंगे हमारे इस्कॉन के अंदर भी. कई प्रकार के लोग हैं जिनका केवल अच्छा लगता है प्रचार करना और उपदेश देना, और उनको बोलेंगे मैनेजमेंट करना है तो ना वो कर पाएंगे और ना वो करना चाहते हैं, और वो भी परेशान बाकी समाज भी परेशान. ऐसे लोगों को यदि प्रबंधन देंगे तो हमें उनको क्या करना चाहिए, ऐसी सुविधा प्रदान करनी चाहिए कि आप भली भांति जो है शास्त्रों को पढ़िए और शास्त्रों का ज्ञान लोगों को दीजिए. ऐसा करके ऐसे ही कई लोग स्वाभाविक रूप से वो प्रबंधन कर सकते हैं. तो ऐसे लोगों को बस ये देखना चाहिए कि वो केवल प्रबंधन ना करते रहें है कि नहीं. नहीं तो उनके अंदर केवल ये एक 4 सी के अलावा 5वां सी की भावना बढ़ जाएगी, वो है कंट्रोल. ऐसे करके तो ये हमें देखना चाहिए कि वो केवल ये हमें जो है तालमेल बैठाना है. ऐसे करके तो ऐसे लोग जो मैनेजमेंट करते हैं उन्हें मैनेजमेंट करना चाहिए. और कुछ लोग स्वाभाविक रूप से होंगे जो मंदिर चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए, प्रचार के लिए धन एकत्रित कर सकते हैं, उनके स्वाभाविक योग्यता होगी ऐसे करके, बिल्कुल स्वाभाविक योग्यता होगी। जैसे प्रभुपाद जी के समय के अंदर भी उन्होंने एक अमेरिका में करताल बनाया, प्रभुपाद इंडिया आ गए थे, वो थोड़े ही करताल थे तो सब भक्तों को, तो वो करताल जो है एल्केमिस्ट के पास लेके गए और सब कुछ किया उन्होंने, और ऐसे 100 पेयर बनवाए उन्होंने। ऑफकोर्स इंडियन करताल के समान तो नहीं था वो, और 100 पेयर बनाए तो वेस्ट के लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक बहुत अच्छा पैकेजिंग किया और उसको करताल को डब्बे के अंदर रखा और उसके अंदर म्यूजिक नोट्स लिख करके कैसे यूज किया जाए, कैसे इससे बजाया जाए, और उसको सेल किया उन्होंने। तो $3 की उनको कीमत पड़ी थी और उसका MRP रखा था उन्होंने $10 ऐसे करके, और जो शॉपकीपर होता था वो $9 में से लेता था, तो फिर भी $6 का इन्हें फायदा होता था ऐसे करके। तो कुछ लोगों में धन कमाने की योग्यता होती है, उदाहरण ये था, तो ऐसे लोग निश्चित धन बहुत तरीके से कमा लेंगे ऐसे करके। तो ऐसे लोगों को BBT शॉप गोविंदास में डालना चाहिए और स्वाभाविक रूप से दुकान चला लेंगे ऐसे करके, है कि नहीं, ये स्वाभाविक है। और कई लोग होंगे जो मंदिर में आते ही, जैसे हमारे मंदिर सुबह से कुछ भक्त आते हैं, वो स्वाभाविक रूप से उनको बहुत चलन, रोज झाड़ू करना, सफाई करना ऐसे करके, पोछा मारना, और हमें से कई भक्तों को शायद गंदगी ना दिखे, लेकिन वो आएंगे उनको एक एक कोना दिखाई पड़ेगा कहां गंदगी, अपने आप सफाई करेंगे वहां पे ऐसे करके। तो ऐसे लोगों को उनकी योग्यता अनुसार फिट करना, ये जो है चैलेंज है, बहुत चैलेंज नहीं, ये ही एक बड़ा प्रश्न है कि किस प्रकार हर व्यक्ति के योगदान को देखते हुए जो है, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। नहीं तो कई बार क्या होता है, प्रजा आश्रित सोचती है कि उनके नेता के अंदर या GBC या टेम्पल प्रेजिडेंट के सारे गुण होने चाहिए, अरे उनके अंदर भी एक ही गुण होगा है कि नहीं, तो और उनके पास होता है अलग अलग सपोर्ट सिस्टम्स हों, धन कमाने एकत्रित करने वाले लोग हों, उनके प्रबंधन करने वाले लोग हों, उनके प्रचार करने वाले लोग हों, तो हमें ऐसे अपने नेताओं को भी सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए, और जो लीडर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि अपने आश्रितों का ध्यान रखे पूर्णतया करके। वही हम देखते हैं इस्कॉन के लीडरशिप के अंदर, अभी जो GBCs हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाए किस प्रकार वो समाज के नेतृत्व कर सकते हैं वास्तविक रूप से कम जो है इस्कॉन के द्वारा, इस्कॉन के अंदर जो है डैमेज हो, इस प्रकार से प्रॉपरली मैनेज हो। तो जो उनका अनुभव है वो तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और प्रशिक्षित करके लोगों को जो है, भक्तों को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर योग्यता आए आध्यात्मिक और प्रबंधन की, और हर प्रकार की योग्यता उनके अंदर आए ताकि वो निश्चित रूप से इस कौन का ढंग से सही प्रकार से प्रबंधन कर सके। तो ये देखते हैं अच्छे लीडरशिप का ये क्वालिटी होता है, उनको भी चिंता रहती है कि आगे वाली भावी पीढ़ी कैसे संभालेगी इसे। तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस्कॉन GBC ने अभी एक सक्सेशन कमिटी बनाया है, इस्कॉन लीड्स ऐसे करके, तो तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सीख सकें इस प्रकार से इस्कॉन का सही प्रकार से नेतृत्व करना और सही सिद्धांत को जो है वो सीख सके और प्रचार कर सके। तो ये म्यूचुअल कॉपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के अंदर जो है। हरे कृष्ण ग्रंथराष्ट्र भागवतम की। किन्हीं भक्तों का एक प्रश्न हो तो दो प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी या प्रश्न या कोई ग्रंथराशो भागवतम की। श्रील प्रभुपाद की। चित्र केतु महाराज की। गौर प्रेमानंदे।